SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार और साथ ही स्वाधीनता दिवस की अनेकों बधाइयां। आइए सुनते हैं भारत के समाचार। भारत की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बधाई देते हुए स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपना पहला संदेश दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि जब भारत आज़ाद हुआ तो अनेक अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और विचारकों ने हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की सफलता के विषय में आशंका व्यक्त की थी, लेकिन आज भारत को यह श्रेय जाता है कि उसने विश्व समुदाय को लोकतंत्र की वास्तविक क्षमता से परिचित कराया।
मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। 76वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। इस गौरवपूर्ण अवसर पर आपको संबोधित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक स्वाधीन देश के रूप में भारत 75 साल पूरे कर रहा है। भारत की आज़ादी हमारे साथ साथ विश्व में लोकतंत्रों के हार समर्थक के लिए उत्सव का विषय है। जब भारत स्वाधीन हुआ तो अनेक अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और विचारकों ने हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की सफलता के विषय में आशंका व्यक्त की थी। उनकी इस आशंका के कई कारण भी थे। उन दिनों लोकतंत्र आर्थिक रूप से उन्नत राष्ट्र तक ही सीमित था। विदेशी शासकों ने वर्षों तक भारत का शोषण किया था। इस कारण भारत के लोग गरीबी और अशिक्षा से जूझ रहे थे, लेकिन भारतवासियों ने उन लोगों की आशंकाओं को गलत साबित कर दिया। भारत की मिट्टी में लोकतंत्र की जोड़ें लगातार गहरी और मजबूत होती गई। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में वोट देने का अधिकार प्राप्त करने के लिए महिलाओं को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा, लेकिन हमारे गणतंत्र की शुरुआत से ही भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया।
आज 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करेंगे, लेकिन स्वाधीनता दिवस का 75वां पर्व भी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी पार्टियों खासकर कांग्रेस के बीच लगातार बढ़ रहे तनाव को शांत न कर पाया है। 14 अगस्त के दिन, जिसे पिछले साल ही प्रधानमंत्री मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया था, भाजपा ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित किया। 1947 में हुई घटनाओं पर अपना कथन जारी करते हुए भाजपा ने 7 मिनट के इस वीडियो में भारत के बंटवारे के लिए कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मुस्लिम लीग को जिम्मेदार बताया है। इस वीडियो में पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर प्रमुखता से दिखाई गई है।
विभाजन का जो काम अंग्रेज 1905 में नहीं कर पाए, वो 1947 में करने में कैसे सफल हो गए? तो जो बात 1905 के बंगाल को 1947 के भारत से अलग बनाती है, वो है कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग और भारतीय कम्युनिस्ट। 1920 के तुर्की के खलीफा के समर्थन में चलाए गए कांग्रेस के खिलाफत आंदोलन ने मुस्लिम कट्टरपंथियों को यकीन दिला दिया कि वे अपनी गैर जरूरी मांग पर भी कांग्रेस के नेतृत्व को मना सकते हैं। 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान नाम के अलग इस्लामिक देश का प्रस्ताव पास किया, और जिस भारत ने 1905 में बंगाल का विभाजन नहीं होने दिया, वो भारत 1947 में भारत विभाजन नहीं रोक पाया, क्योंकि कांग्रेस के जिन नेताओं पर लीग के सामने खड़े होने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने अंत समय में बिना भारत के लोगों को विश्वास में लिए विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।
इस वीडियो के ऊपर गुस्साई कांग्रेस ने पलटवार करते हुए ट्विटर पर ही भाजपा की खबर ले डाली और लिखा, हमारा लक्ष्य था देश की आज़ादी और उनके इरादे थे देश का विभाजन। सत्ता में बैठकर वो आज भी वही कर रहे हैं और हम आज भी इस देश को उनके कुटिल इरादों से बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अंग्रेज़ों के मुखबिर और माफीनामे के जनक, कान खोल कर सुन ले, इरादे नापाक हैं और नाकाम कर दिए जाएंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भाजपा पर हमला बोलते हुए एक के बाद एक कई ट्वीट किए उन्होंने कहा कि सच यह है कि दो राष्ट्र का सिद्धांत सावरकर ने दिया था, जिसे जिन्ना ने आगे बढ़ाया। श्री रमेश ने कहा कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने के पीछे प्रधानमंत्री की वास्तविक मंशा सबसे दर्दनाक ऐतिहासिक घटनाओं को अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना है। मोदी सरकार के हर घर तिरंगा प्रोग्राम को लेकर कई भाजपा शासित राज्यों से लोगों को, खासकर गरीबों को, रुपए लेकर जबरन तिरंगा झंडा थमाने की खबरें आई हैं। हरियाणा राज्य में तो राशन की दुकानों पर लोगों से जबरन 20 रुपए लेकर तिरंगा झंडा दिया जा रहा था और मना करने पर राशन कार्ड से उनका नाम हटाने की धमकी भी दी जा रही थी। भाजपा ने इस विषय में सफाई दी है कि वह कम पैसे में झंडा देकर गरीबों की सहायता कर रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में गरीब लोग हैरान परेशान दिख रहे हैं और कम राशन देने की व्यथा बयान कर रहे हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश में भी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को हिदायत दी गई थी कि वो अपने रुपयों से तिरंगा खरीदकर उसकी तस्वीर वेबसाइट पर अपलोड करें और साथ ही लोगों में भी वितरित करें। तिरंगे के ऊपर उत्तराखंड के भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट द्वारा दिए गए एक बयान पर खासा विवाद मचा हुआ है। श्री भट्ट का कहना था कि जिन लोगों ने घरों में तिरंगा ना लगाया हो उनकी तस्वीरें उन्हें भेजी जाएं। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा ने इस पर भाजपा को घेरते हुए कहा कि भाजपा को तिरंगे का सम्मान करना नहीं आता है।
कि भारतीय जनता पार्टी के मातृत्व जो उनका संगठन है संघ परिवार, उसने 52 साल तक भारत के झंडे को स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि मोदी जी का जब बयान आया कि सब लोग अपनी डीपी में भारत का झंडा लगाएंगे, संघ परिवार के बड़े लोगों ने किसी ने भी डीपी में भारतीय झंडे को लगाने की जहमत नहीं उठाई, तो ये समझा जा सकता है कि दिखाने की दांत और खाने की दांत और है।
भाजपा के हर घर तिरंगा प्रोग्राम को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने बड़े स्तर पर गांव शहरों में तिरंगा यात्रा निकाली है और लोगों को मुफ्त में तिरंगे झंडे बांटे हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के सदस्य अब्दुल रऊफ अजहर पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रा बैन लगाने और संपत्ति फ्रीज करने की मांग को चीन द्वारा रोक दिए जाने पर भारत ने खेद जताने के साथ साथ चिंता भी प्रकट की है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसे दोहरा मापदंड बताते हुए चीन पर निशाना साधा।
For Abdul Rauf Ashgar. I wanted to emphasize that it's unfortunate that when it comes to our collective battle against terrorism, the international community has been unable to speak in one common voice.
भारतीय वॉरेन बफेट कहे जाने वाले शेयर मार्केट के दिग्गज राकेश झुंझुनवाला का रविवार की सुबह 62 साल की उम्र में निधन हो गया। श्री झुंझुनवाला की कुल संपत्ति 48,000 करोड़ रुपए आंकी जाती है। वे प्रधानमंत्री मोदी के करीबी दोस्त माने जाते थे। प्रधानमंत्री मोदी समेत केंद्र सरकार के सभी बड़े मंत्रियों ने श्री झुंझुनवाला के निधन पर दुख जाहिर किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा, राकेश झुंझुनवाला जिंदा दिल, हाजिर जवाब और गहरी समझ वाले व्यक्ति थे। उन्होंने आर्थिक जगत में एक अमिट छाप छोड़ी है। वह भारत की प्रगति को लेकर बहुत जुनूनी थे। उनका दुनिया से जाना दुखद है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।